संबंध, देवताओं का पूजन करने वालों का अविधि पूर्वक पूजन करना क्या है, इस पर कहते हैं अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका पतन होता है। व्याख्या। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, वे मुझको केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है ऐसा निश्चय नहीं कर सकते। 244। अतः परमात्मा की तरफ चलने में दो बाधाएं हैं, अपने को भोगों का भोक्ता मानना और अपने को संग्रह का मालिक मानना। इन दोनों से ही मनुष्य की बुद्धि उल्टी हो जाती है, जिनसे यह परमात्मा से विमुख हो जाता है। जैसे बचपन में बालक मां के बिना रह नहीं सकता था, पर जब बड़ा हो गया, उसका विवाह हो जाता है, तब वह स्त्री से मेरी स्त्री है ऐसा संबंध जोड़कर उसका भोक्ता और मालिक बन जाता है। फिर उसको मां उतनी अच्छी नहीं लगती, स्वाति नहीं। ऐसे ही जब यह जीव भोग और ऐश्वर्य में लग जाता है, अपने को भोगों का भोक्ता और संग्रह का मालिक मानकर उनका दास बन जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है, तो फिर उसको ये बात याद ही नहीं रहती कि अरे सबके भोक्ता सबके मालिक भगवान है, इसी से उसका पतन हो जाता है। परंतु जब भी इस जीव को चेत होता है कि अरे वास्तव में मात्र भोगों के भोक्ता और मात्र ऐश्वर्य के मालिक तो भगवान ही है, तो फिर वह तत्परता से भगवान में लग जाता है, ठीक रास्ते पर आ जाता है और वह महान पतन से बच जाता है। अहम् हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मनुष्य यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि जितने शुभ कर्म करते हैं तथा अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार जितने व्यावहारिक और शारीरिक कर्तव्य कर्म करते हैं, उन सब कर्मों का भोक्ता अर्थात फल भागी मैं हूं। कारण कि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृति ग्रंथों में प्राणियों के लिए शुभ कर्मों का जो विधान किया गया है, वह सब का सब मेरा ही बनाया हुआ है और मुझे देने के लिए ही बनाया हुआ है, जिससे ये प्राणी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों से और उनके फलों से सर्वथा निर्लिप्त रहे, कभी अपने स्वरूप से च्युत न हो और अनन्य भाव से केवल मुझ में ही लगे रहे। अतः उन संपूर्ण शुभ कर्मों का और व्यावहारिक तथा शारीरिक कर्तव्य कर्मों का भोक्ता मैं ही हूं। जैसे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता फल भागी मैं ही हूं, ऐसे ही संपूर्ण संसार का, संपूर्ण लोक पदार्थ व्यक्ति घटना परिस्थिति क्रिया और प्राणियों के शरीर मन बुद्धि आदि का मालिक भी मैं ही हूं। कारण कि अपनी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने मैं से इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, अतः इन सब की रचना करने वाला होने से इनका मालिक मैं ही हूं। विशेष बात, भगवान का भोक्ता बनना क्या है? भगवान ने कहा है कि महात्माओं की दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही है, 7×19 और मेरी दृष्टि में भी सत असत सब कुछ मैं ही हूं, सदसच्चाम अर्जुन 9×19। जब सब कुछ मैं ही हूं तो कोई किसी देवता की पुष्टि के लिए यज्ञ करता है, उस यज्ञ के द्वारा देवता के रूप में मेरी पुष्टि होती है। कोई किसी को दान देता है तो दान लेने वाले के रूप में मेरा ही अभाव दूर होता है, उससे मेरी ही सहायता होती है। कोई तप करता है तो उस तप से तपस्वी के रूप में मुझे ही सुख शांति मिलती है। कोई किसी को भोजन कराता है तो उस भोजन से प्राणों के रूप में मेरी तृप्ति होती है। कोई शौच स्नान करता है तो उससे उस मनुष्य के रूप में मुझे ही प्रसन्नता होती है। कोई पेड़ पौधे को खाद देता है, उनको जल से सींचता है तो वह खाद और जल पेड़ पौधे के रूप में मुझे ही मिलता है और उनसे मेरी पुष्टि होती है। कोई किसी दीन दुखी अपाहिज की तन मन धन से सेवा करता है तो वह मेरी ही सेवा होती है। कोई वैद्य डॉक्टर किसी रोगी का इलाज करता है तो वो इलाज मेरा ही होता है। कोई कुत्ते को रोटी डालता है, कबूतरों को दाना डालता है, गायों की सेवा करता है, भूखों को अन्न देता है, प्यासों को जल पिलाता है तो उन सब के रूप में मेरी ही सेवा होती है। उन सब वस्तुओं को मैं ही ग्रहण करता हूं। जैसे कोई किसी मनुष्य की सेवा करे, उसके किसी अंग की सेवा करे, उसके कुटुंब की सेवा करे तो वह सब सेवा उस मनुष्य की ही होती है। ऐसे ही मनुष्य जहां कहीं सेवा करे, जिस किसी की सहायता करे, वह सेवा और सहायता मुझे ही मिलती है। कारण कि मेरे बिना कोई दूसरा है ही नहीं, मैं ही अनेक रूपों में प्रकट हुआ हूं। बहुश्याम प्रजा ये यह, तात्पर्य यह हुआ कि अनेक रूपों में सब कुछ ग्रहण करना ही भगवान का भोक्ता बनना है। भगवान का मालिक बनना क्या है? भगवत तत्व को जानने वाले भक्तों की दृष्टि में अपरा और परा प्रकृति रूप मात्र संसार के मालिक भगवान ही है। संसार मात्र पर उनका ही अधिकार है। सृष्टि की रचना करें या न करें, संसार की स्थिति रखें या न रखें, प्रलय करें या न करें, प्राणियों को चाहे जहां रखें, उनका चाहे जैसा संचालन करें, चाहे जैसा उपभोग करें, अपनी मर्जी के मुताबिक चाहे जैसा परिवर्तन करें आदि, मात्र परिवर्तन परिवर्धन करने में भगवान की बिल्कुल स्वतंत्रता है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे भोगी पुरुष भोग और संग्रह का चाहे जैसा उपभोग करने में स्वतंत्र है, ऐसे ही भगवान मात्र संसार का चाहे जैसा परिवर्तन परिवर्धन करने में सर्वथा स्वतंत्र हैं। भगवान की यह स्वतंत्रता वास्तविक है, यही भगवान का मालिक बनना है। न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वे नातश्चवन्ति ते। वास्तव में सत असत जड़ चेतन आदि सब कुछ मैं ही हूं। अतः जो भी कर्तव्य कर्म किए जाए उन कर्मों का और उनके फलों का भोक्ता मैं ही हूं, तथा संपूर्ण सामग्री का मालिक भी मैं ही हूं। परंतु जो इस तत्व को नहीं जानते वे तो यही समझते हैं कि हम जिस किसी को जो कुछ देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, वह सब उन उन प्राणियों को मिलता है। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के भोक्ता देवता बनते हैं, दान देते हैं तो दान का भोक्ता वह लेने वाला बनता है, कुत्ते को रोटी और गाय को घास देते हैं तो वह रोटी और घास के भोक्ता कुत्ता और गाय बनते हैं, हम भोजन करते हैं तो भोजन के भोक्ता हम स्वयं बनते हैं, आदि आदि। तात्पर्य यह हुआ कि वे सब रूपों में मुझे न मानकर अन्य को मानते हैं, इसी से उनका पतन होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी अन्य को भोक्ता और मालिक न मानकर केवल मुझे ही भोक्ता और मालिक माने, अर्थात जो कुछ चीज दी जाए उसको मेरी ही समझकर मेरे अर्पण करे। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। दूसरा भाव यह भी है कि मनुष्य के पास जो कुछ भोग और ऐश्वर्य है वो सब मेरा ही है और मेरे विराट रूप संसार की सेवा के लिए है। परंतु भोग और ऐश्वर्य में आसक्त मनुष्य उस तत्व को न जानने के कारण उस भोग और ऐश्वर्य को अपना और अपने लिए मान लेते हैं, जिससे वे यही समझते हैं कि ये सब चीजें हमारे उपभोग में आने वाली हैं और हम इनके अधिपति हैं, मालिक हैं। पर वास्तव में हम उन चीजों के गुलाम हो जाते हैं। वे जितना ही उन चीजों को अपनी और अपने लिए मानते हैं उतने ही उनके पराधीन हो जाते हैं। फिर वे उन चीजों के बनने बिगड़ने से अपना बनना बिगड़ना मानने लगते हैं, इसलिए उनका पतन हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि मुझे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और मालिक जानने से मुक्ति हो जाती है और न जानने से पतन हो जाता है। च्यवंती पद का तात्पर्य है कि भगवान को प्राप्त न होने से उनका पतन हो जाता है। वे शुभ कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोक में चले जाए तो भी यह उनका एक तरह से पतन है, क्योंकि वहां से पीछे लौटकर आना ही पड़ेगा। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। नवा का 21। वे आवागमन को प्राप्त होते ही रहते हैं, मुक्त नहीं होते। परिशिष्ट भाव। पांचवे अध्याय के अंत में भी भगवान ने अपने को संपूर्ण यज्ञों और तपों का भोक्ता बताया है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम 5:29। वहां तो भगवान ने अन्वय रीति से अपने को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता जानने वालों को शांति प्राप्त होने की बात कही है, और यहां व्यतिरेक रीति से वैसा न जानने वालों का पतन होने की बात कही। स्वयं भोक्ता बनने से ही पतन होता है, भगवान को संपूर्ण कर्मों का भोक्ता मानने से अपने में भोक्तापन या भोगेच्छा नहीं रहती। भोगेच्छा न रहने से शांति प्राप्त हो जाती है। वास्तव में संपूर्ण कर्मों के महाकर्ता और महाभोक्ता भगवान ही हैं, परंतु कर्ता भोक्ता होते हुए भी भगवान वास्तव में निर्लिप्त ही हैं, क्योंकि उनमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं है। इसलिए चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है, तस्य कर्तारम अपि माम विद्य अकर्तारम अव्ययम्। और निर्लिप्तता के लिए कहा है चौथे अध्याय के 14वें श्लोक में कि नमाम कर्माणि लिम्बन्ति नमे कर्म फलेस्प्रिया।